Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Pushpadan's Shiva Mahimna Stotra, presented by Swami Sri Muktanandji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
आप यहाँ भी रहते होंगे गांव में, रहते ना, फिर बड़े बड़े महल बना लिए तो क्या? अगर भगवान का भजन नहीं किया तो कुछ भी नहीं है, और भगवान का भजन किया तो कुबेर भी बन जाओ तो भी अच्छा है। यहां निंदा से धन की निंदा नहीं है, निंदा का अर्थ है कि यदि आपने भगवान का भजन किया तो फिर आप कुबेर बन जाओ। कुबेर को याद करते हैं, क्यों याद करते हैं? क्योंकि कुबेर पैसे को रखते नहीं, देते हैं। जिसने मांगा उसको दे दिया, देवताओं ने मांगा देवताओं को दे दिया, अरे मनुष्यों ने मांगा मनुष्यों को दे दिया, राक्षसों ने मांगा राक्षसों को दे दिया, जिसने मांगा उन्हीं को ही दिया। अगर वो देते नहीं, रखते ही, तो उनमें लोभ आता, क्रोध आता, मोह आता, आसक्ति आती, फिर वो देवत्व को प्राप्त, देवत्व को प्राप्त इसलिए क्या है कि वो देने वाले हैं। किं वा पुत्र कलत्र मित्र पशुभिर् देहेन गेहेन किम् ज्ञात्वै तत्क्षण भंगुरम सपदिरे त्याज्यम मनो दूरत। ते मन तो विचार कर ले, जिनके बारे में तू सोच रहा है वो तो क्षणिक हैं, ज्ञात्वै तत्क्षण क्षण भंगुर है, क्षण भंगुर कुछ समय के लिए ठहरते हैं और फिर चले जाते हैं। अच्छा, आप गंगा जी में जा गए, गंगा जी गए, गंगा यमुना किसी पवित्र नदी में तो गए होंगे ना। जब आपने डुबकी लगाई नदी में, जिस पानी में आपने डुबकी लगाई है, क्या डुबकी लगाने के बाद, गोता लगाने के बाद बाहर जब निकले पानी वही था या दूसरा था? बस यही जीवन है, यही जीवन है। लगता तो ऐसा है कि वही पानी है, क्यों? क्योंकि अनवर्तता के कारण उसकी जो निरंतरीयता है पानी की, वो टूट नहीं रही है, इसलिए हमें लगता है कि पानी वही है। लेकिन वो पानी तो जैसे आप नीचे गए बहकर के चला गया, ये तो दूसरा पानी है। बस यही जीवन है। ज्ञात्वै तत्क्षण भंगुरम सपदिरे त्याज्यम मनो दूरतरे। मेरे मन इसको क्षण भंगुर समझ करके दूसरे से ही छोड़ दे, भाई इसको छोड़े तो पकड़े क्या? स्वात्मार्थम गुरु वाक्य तो भज भज श्री पार्वती वल्लभम। अरे एकमात्र भजन कर किनका? पार्वती वल्लभ का। किनका भजन करें? भगवान शिव का। चंद्रोद्भाषित शेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पैर्भूषित कंठ कर्ण विवरे नेत्रोत्थवैश्वानरे दंती त्वकृत सुंदरांबरधरे त्रैलोक्य सारे हरे मोक्षार्थम कुरु चित्त वृत्ति मचनाम अन्यस्तु किम कर्म भी। हा हा, कहां ध्यान करें हम? ध्यान का भी जगह बता दी भगवान शंकराचार्य ने, कहां ध्यान करें? चंद्रोद्भाषित शेखरे, जिन्होंने अपने शिखर पर चूड़ामणि के रूप में चंद्रमा को, भाई ये चंद्रमा को क्यों धारण किया? भगवान ने चंद्रमा को धारण क्यों किया? आप लोग कहेंगे भगवान भांग पीते हैं इसलिए, और नशा हो जाता है तो उसको शांत करने के लिए चंद्रमा को धारण किया। देखो हम आपको ईमानदारी से बताते हैं, चार वेद छह शास्त्र, रामायण और महाभारत, रामायण और महाभारत और जितने भी पुराण है, कहीं पर भी भगवान शंकर ने भांग पी ऐसा लिखा नहीं है, कहीं पर भी नहीं लिखा। चार वेद छह शास्त्र, छह शास्त्र तो उनके निर्गुण निराकार की व्याख्या करते हैं। चार वेद, छह शास्त्र, रामायण और महाभारत और 18 पुराण, किसी में भी नहीं लिखा है कि भगवान शंकर ने भांग पी। ये तो लोक परंपरा चल पड़ी, जैसे बहुत सी परंपराएं गलत भी चल जाती है ना, अनावश्यक रूप से बहुत परंपराएं चलती हैं, ये भी एक परंपरा चल गई। भगवान शंकर ने भांग पी, पीते भंग प्याला, शिव पीते भंग प्याला, बोलते ना मारती में, ये परंपरा चल गई। भांग नहीं पी उन्होंने, चंद्रमा को धारण किया, क्यों? बड़ा सुंदर उनका जीवन है, बड़ा सुंदर जीवन है, देखो उनका जीवन कितना सुंदर है। अगर आप लोक व्यवहार में आप उनको देखें तो उनके गले में क्या है? विष है, विष, गले में विष है, और सिर के ऊपर गंगा जी है, चंद्रमा है। ये जो चंद्रमा है आह्लादकता का प्रतीक है, किसका है? चंदन और चंद्र दोनों आह्लादकता है। चंदनम शीतलम लोके चंदनादपि चंद्रमा, संसार में यदि शीतल है तो चंदन है, और चंदन से भी ज्यादा शीतल है तो चंद्रमा है। चंदनम शीतलम लोके चंदनादपि चंद्रमा, चंदन चंद्रयोर मध्ये शीतला साधु संगति। यदि और ठंडक चाहिए आपको, देखिए ठंडक चाहिए तो आप चंदन लगाइए, ज्यादा ठंडक चाहिए तो चंद्रमा को धारण कर लीजिए, इससे भी आपकी गर्मी नहीं शांत हुई, ज्यादा ठंड चाहिए तो साधु संगति कीजिए, साधु संगति से परम आनंद की प्राप्ति होती है। तो चंद्रोद्भासित से करे, जिन्होंने आनंद आनंद स्वरूप जिनका है, जिन्होंने चंद्रमा को धारण कर रखा है, मानो आह्लादकता को जिन्होंने धारण कर रखा है, जिनको देखते ही हमारे मन में आह्लादकता आ जाती है। स्मर हरे, आहा, ये स्मर क्या है? स्मर कहते हैं कामदेव को, जिन्होंने काम को भस्म कर दिया है, इच्छाएं है ही नहीं जिसकी। हमारे वल्लभाचार्य जी महाराज एक बात कहते हैं, देखो आप विष्णु का भजन करोगे ना तो विष्णु के भजन से आपको धन नहीं मिलेगा, लक्ष्मी मिलने वाली नहीं है, तो लक्ष्मी तो शिव जी के भजन से ही मिलेगी। उन्होंने पूछा क्यों? कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपनी प्यारी वस्तु किसी को नहीं दिया करता, जिसको जो प्यारी है वो दूसरे को नहीं देता। अच्छा, विष्णु को सबसे प्यारी क्या है? है ना, तो वो कैसे आपको दे देंगे? भागवत में तो लिख दिया, यस्याहम अनुग्रहणामि हरिष्ये। हाँ देखो, आपको मालूम है, जिसके ऊपर मैं कृपा करता हूं तो सबसे पहले उसका धन हरण करता हूं। क्यों? ताकि उसको निर्धन समझ करके सब लोग छोड़ दें। और भगवान शंकर क्या कहते? भाई अपना ऐसा नहीं है, तो हमारा क्या है? भोगश्च मोक्षस्थ करस्थ एव, दोनों है हमारे साथ, भजन करो आपको भोग भी मिलेगा और मोक्ष भी मिलेगा, दोनों ही मिलेंगे। अच्छा, देवासुर है ना, देवासुर में जिन्होंने भी भगवान का भजन किया, चाहे देवताओं ने किया चाहे असुर ने किया, सारे ऐश्वर्य संपन्न थे, नरक में कोई नहीं गया। नमन्ति ऋषयो देवाः, है ना, षडक्षर मंत्र में दूसरा मंत्र है न, नमन्ति ऋषयो देवाः नमन्त्यप्सरसाङ्गणः नरा नमन्ति देवेशम् नकाराय नमो नमः। अरे देव, ऋषि, गंधर्व, सागर, मनुष्य सभी तो आपका भजन करते हैं, लेकिन किसी भी भजन करने वाले का आप दुर्गति होने। अच्छा, भगवान कृष्ण ने तो भगवद गीता में कहा है, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात, कल्याण करने वाले की दुर्गति नहीं होती और जो मेरा भजन करता है उसकी। नमे भक्तः, हाँ मालूम तो है, लेकिन धीरे धीरे मालूम पड़ेगा। क्यों? क्योंकि संस्कार बहुत बलवान है। देखो, रोज झाड़ू लगाओगे, रोज झाड़ू लगाओगे तो ही सफाई होगी। एक दिन के झाड़ू लगाने से सफाई होने वाली आप सोचते हैं कि एक दिन कथा सुन ली अब तो हमें यहां मालूम है। रामकृष्ण परमहंस के पास एक सज्जन गए, सज्जन गए कहने लगे महाराज आपने तो सब कुछ पा लिया है फिर आप क्यों रोज ये जप करते हैं, माँ 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 क्यों चिल्लाते रोज, जब आपको माँ के दर्शन हो गए और इतना ही नहीं माँ से ऊपर आप पहुंच गए, माँ का तो गला काट दिया था आपने, आप तो ब्रह्म रूप हो गए। तो रामकृष्ण परमहंस ने कुछ कहा नहीं, उन्होंने कैसा करो एक लोटा लेके आओ पानी का, पानी का लोटा लाए, वो बोले इसको साफ करके लाओ, बढ़िया साफ करके गंगा जी की मिट्टी से साफ करके वो ले आए, एक तरफ रखवा दिया। पांच दिन सात दिन आठ दिन बाद फिर आए, कहने लगे वो लोटा में पानी लेकर के आओ। वो लोटा लेके चला तो जैसे ही धोने लगा तो ठाकुर ने कहा कि क्या कर रहे हो, महाराज साफ कर रहा हूं। क्यों, उस दिन साफ नहीं किया था? नहीं, इसमें धूल जम गई। क्या हुआ इसमें? कहते पगले हम भी इसलिए रोज रोज जप करते हैं कहीं धूल। हालांकि ठाकुर को धूल नहीं जमने वाली थी लेकिन लोक शिक्षा के लिए महापुरुष ऐसा व्यवहार, लोक शिक्षा के लिए वो व्यवहार करते हैं, इसलिए प्रतिदिन जप करना चाहिए, प्रतिदिन सत्संग श्रवण करना चाहिए, प्रतिदिन साधु संगति करनी चाहिए, तब जाकर के ये भाव हमारे अंदर आता है कि कहीं धुल जाए। तो चंद्रोद्भाषित शेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे, जो गंगा को धारण करने वाले हैं ऐसे सबका कल्याण, सम कल्याणम करोतीति शंकरः, जो सबका कल्याण करने वाले हैं। सर्पैर्भूषित कंठ कर्ण विवरे नेत्रोत्थवैश्वानरे, सर्प का जिन्होंने आभूषण धारण कर रखा है, एक बार लक्ष्मी के मन में आया कि पार्वती को चिढ़ाते हैं तो पार्वती के पास चली गई और जाकर के कहने लगी कहां है वो सर्पों के राजा। पार्वती ने समझा ये टोंट कर रही है, उन्होंने कहा जाओ क्षीर सागर में मिलेंगे। अच्छा क्षीर सागर में क्या है, किस पर सो रहे हैं? सांपों पर ही सो रहे ना। उन्होंने कहा मेरा मतलब ये नहीं था। तो क्या मतलब था? कहने लगी मैं पूछ रही थी पशुपति कहां है। उन्होंने कहा वृंदावन में मिलेंगे आपको, जाओ। अरे एक ने क्रोध का नाश करके अपने आभूषण बना लिया तो एक ने उसकी सैया बना ली। सर्पैर्भूषित कंठ कर्ण विवरे नेत्रोत्थवैश्वानरे, जिनकी तीसरे नेत्र से अग्नि प्रकट हुई, दंतीकृत जिन्होंने हाथी के गज चरम को धारण कर रखा, सुंदराम बरधरे, एक बहुत बड़ा राक्षस था गजासुर नाम था उसका। क्या नाम था? गजासुर नाम था, बहुत बड़ा राक्षस था। महाराज उसने तपस्या की, इतनी भयंकर तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, कहने लगे वरदान मांगो। उन्होंने कहा मेरे को अमरता का वरदान चाहिए। देखो देवासुर में क्या है, देव ये कहता है कि मुझे आपकी भक्ति चाहिए और असुर क्या कहता है, मुझे अमरता चाहिए। हालांकि मरना कोई नहीं चाहता, मरना कोई नहीं चाहता, सब अमरता ही चाहते हैं, लेकिन अमरता के वास्तविक स्वरूप को कोई पहचानता, कोई नहीं पहचानता। उन्होंने कहा यह तो संभव नहीं है। अपार शक्ति दे दी ब्रह्मा जी ने उनको, अपार शक्ति। अब महाराज वो सबको परेशान करने लग गए, अब क्या करें, कोई उपाय नहीं सूझा। सबके सब भगवान शंकर के पास गए और शंकर भगवान ने उसको वध किया, मार दिया और उसकी जो चरम थी वो अपने लपेट ली। भाई दिगंबर तो थे ही, उन्होंने सोचा चलो कपड़ा पहनने काम आ जाएगा। तो दंती पकृत सुंदरांबर धरे त्रैलोक्य सारे हरे, त्रैलोक्य सार। अच्छा त्रैलोक्य का सार क्या है? देखो ये भी एक गजब की बात है, जब आप स्वर्ण भस्म बनाते तो स्वर्ण की राख ही उसका सार हो जाती है ना, स्वर्ण की राख। हीरा भस्म बनाएंगे तो कोई भी चीज अग्नि में डाल दोगे वो भस्म हो जाएगी, तो उसका सार रूप है वो। ऐसे ही सारा संसार कहां लय को प्राप्त होता है? संसार को भस्म करने वाले कौन है? कौन है? शिवजी। तो त्रैलोक के सार, तीनों लोकों के एकमात्र सार है भगवान शिव। अच्छा, ये तो भगवान शंकर ने तीनों लोकों का भस्म कर दिया, आप भी तो भस्म कर सकते हैं। वेदांत की भाषा में उसका एक शब्द दिया बड़ा प्यारा, बाध। बाध करना, बाध समझते हैं ना, बाध माने हटा देना, दूर कर देना। अगर सरल भाषा में कहें तो बाध वेदांत का एक टेक्निकल वर्ड है। बाध कर देना, हटा देना, दूर कर देना। क्या बाध करें हम? क्या बाध करें? तो वेदांत में है ये ब्रह्मास्मि माला है ना, देखो इसमें बड़ा प्यारा लिखा है, अहम ब्रह्मा मम ब्रह्मा महद ब्रह्मा हम तथा इदम ब्रह्मा अनिदम ब्रह्मा। जो इदम है वह भी ब्रह्म है, और जो इदम नहीं है अनिदम है वह भी ब्रह्म है। तो बाद क्या करना है? इदम और अनिदम दोनों का बाद करना है। इसको वेदांत की भाषा में बोलते हैं अध्यारोप और अपवाद। क्या बोलते हैं? अध्यारोप और अपवाद। अध्यारोप माने आपने अपने ऊपर कुछ आरोप कर दिया, आपने अपने ऊपर कुछ आरोप कर दिया। अब समझ में नहीं आ रहा, जब गुरु वाक्य आपने सुना तो उसको दूर करना चाहते हो, अप माने दूर करना, उसका अपवाद कर दिया आपने, दूर कर दिया। तो हमने अपने ऊपर आरोप क्या किया? देखो हमने क्या आरोप किया अपने ऊपर। हमने अपने ऊपर आरोप किया शरीर को, केवल शरीर को ही नहीं, मन को, बुद्धि को, प्राण को, सुख और दुखों को, मन की प्रत्येक तरंगों को, प्रत्येक वृत्ति को, बुद्धि के प्रत्येक निर्णयों को, और इसके कारण मैं और मोर मेरा और मैं और मेरा, जो कुछ भी, इन सब का हमने अपने पर आरोप कर दिया ना आरोप। अब हम क्या कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, मैं राजा हूं, मैं रंक हूं, मैं साधु हूं, मैं ब्राह्मण हूं, अरे मैं धनपति हूं, मैं निर्धन हूं। ये सारा का सारा आरोप हमने अपने ऊपर कर दिया। आप पढ़ते तो हैं वो मनोबुद्धि अहंकार, पढ़ते तो हैं, लेकिन ये क्या कहते हैं कि मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं चित्त हूं, मैं अहंकार हूं? ये आपने अपने ऊपर आरोप किया है, ये आपने अपने ऊपर चादर ओढ़ रखी इनकी, ये तो आपने एडॉप्टेड कर रखे हैं। आप इन आरोपों को हटाते जाइए, लेकिन सहज में तो हटेंगे नहीं। देखो एकदम अगर हम हटाना चाहें तो एकदम ये हटने वाले भी, तो क्या करें इनका? तो महाराज इनके लिए शास्त्रों ने विधि बताई है। देखो पहले अगर आप स्थूल हैं, मतलब ज्यादा सूक्ष्म बुद्धि नहीं है, तो सूक्ष्म बुद्धि का मेरा मतलब कंप्यूटर वाली बुद्धि से नहीं है, तत्व को ग्रहण करने वाली बुद्धि से, तो फिर आप जप करें, तीर्थ उपासना करें, व्रत करें, तीर्थ यात्रा करें, फिर जप करें, फिर उपासना करें, धीरे धीरे भक्ति आएगी और भक्ति से ज्ञान आएगा, परंपराया है। लेकिन बहुत लंबे समय तक आपको सत्संग करना होगा, जब बहुकाल करहिं सत्संगा, बहुत लंबे समय तक जब आप सत्संग करेंगे तो आपके संशय की निवृत्ति होगी, नहीं तो संशय की निवृत्ति होगी नहीं। कहेंगे महाराज ये महात्माओं को क्या मालूम, अच्छा भला बढ़िया, हम आहा क्या क्या कहते हैं, आजकल तो खत्म हो गए होगा बॉम्बे में आमरस है ना, तो हम अब इधर तो मौसम ऑफ हो गया होगा आम का, हाँ अब हम उधर से आए उत्तर भारत से, वहां तो चालू हुआ है, बढ़िया आमरस खा रहे मजा आ रहा है, बढ़िया मिठाई खा रहे मजा आ रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है, ये महात्मा कह रहे हैं सब मिथ्या है, तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। हमने आरोप कर लिया, अपने आप को मान लिया, मान्यता बना ली कि मैं ये हूं। मान लो मेरा नाम रमेश है और सुन सुन करके मैंने एक अपनी मान्यता बना ली, मैं रमेश हूं। अगर रमेश को कोई कुछ कहता तो दुख होता, और सुरेश को कहे तो, और पिताजी माताजी अब आपका नाम सुरेश रख देते तो, अरे मेरा नाम ये है, क मेरा नाम है, मेरी मान्यता ही तो है, मेरा नाम क है, ये मेरी मान्यता है, मैं तो कैसे परे हूं। इसी प्रकार से देह मैं हूं, ये मेरी मान्यता है, मन मैं हूं, ये मेरी मान्यता है, प्राण मैं हूं, ये मेरी मान्यता है, बुद्धि मैं हूं, ये मेरी मान्यता है, मैंने मान लिया, यही अध्यारोप है। अज्ञानता के कारण, जन्म जन्म के संस्कारों के कारण, जो मैं नहीं हूं, उस मैं नहीं हूं को मैंने अपना स्वरूप मान लिया, इसी को कहते हैं अध्यारोप। और जब आप इसका अपवाद करते हुए चले जाएंगे तो जैसे भगवान शंकर त्रैलोक के सार हैं, तो ऐसे आप भी स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का बाद कर देंगे तो आप भी त्रैलोक के सार हो जाएंगे, हो जाएंगे ना। तो त्रैलोक के सारे हरे, जैसे तीनों लोग भगवान शंकर के ऊपर टिके हुए हैं, अधिष्ठित हैं, अधिष्ठान शंकर हैं, ऐसे ही ये शरीर भी आप पर टिका हुआ है, आप इसके अधिष्ठान हैं। जैसे भगवान शंकर तीनों लोकों का लय कर देते हैं, ऐसे आप ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम भस्म सात कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि के द्वारा तीनों प्रकार के शरीरों को भस्म करके, आहा कितना आनंद आएगा। देखो त्रैलोक के सारे हरे, मोक्षार्थम कुरु चित्त वृत्ति मचलाम, अन्यस्तु किम कर्म भी। ऐसे भगवान शंकर में मोक्ष के लिए, टू गेट लिब्रेशन, मोक्ष के लिए, जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए, आवागमन से छूटने के लिए, अरे संसार का बाध करने के लिए, अपने स्वरूप में ठहरने के लिए, ऐसे भगवान शंकर में अपनी अचल मनोवृत्ति को करो। मोक्षार्थम कुरु चित्त वृत्ति मचलाम, अचलाम चित्त वृत्तिम मोक्षार्थम कुरु, ऐसे भगवान शंकर में आप मन लगाओ, बाकी में कुछ रखा नहीं है। ये ऐसे भगवान शिव हैं महाराज, जो आपको सब कुछ प्रदान करने वाले, सब कुछ देने वाले हैं। इसलिए हमने विचार किया भगवान शिव की कथा, ये 31 तारीख तक उनकी चर्चा करेंगे, कभी कहीं से कभी कहीं से उनकी कथा सुनाएंगे, क्योंकि बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। भगवान शंकर का एक नाम क्या है, आशुतोष, क्या नाम है, जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। वृकासुर एक राक्षस था, वृकासुर क्या नाम था, वृकासुर, सुना आपने नाम वृकासुर का, नाम तो सुना है, हाँ जी, हाँ इंद्र का शत्रु भी है, वो वृत्रासुर था, इंद्र के शत्रु का क्या नाम था, वृत्रासुर, मैं वृकासुर की बात कर रहा हूं। खैर असुर तो सारे इंद्र के शत्रु ही होते हैं, वो आपकी बात गलत नहीं है, वे जितने भी राक्षस हैं, यानी राक्षस वृत्ति देव वृत्ति का शत्रु वही करता है, वो आपकी बात ठीक है। तो इंद्र का शत्रु मान लो, अथवा देव वृत्ति का शत्रु मान लो, अथवा शुभ कर्मों का शत्रु मान लो, जो भी आप माने उसमें कोई बात नहीं। तो वृकासुर ने तपस्या की, तपस्या की, भयंकर तपस्या की, आप उसको भस्मासुर के नाम से जानते हैं ना, भस्मासुर के नाम से जानते हैं, हाँ तपस्या की। और महाराज तप के लिए मांगा, क्या चाहिए, उन्होंने कहा मैं जिसके सिर पर हाथ रखू वही, क्या बात है। भगवान भोलेनाथ ने कहा तथास्तु, क्या कहा, तथास्तु। अब उनके ही सिर पर हाथ रखने के लिए चल दिए। अब ये भी भोलेनाथ की महिमा है, अगर वो चाहते तो वहां से अदृश्य भी हो सकते थे, वो चाहते तो अदृश्य भी हो सकते थे, वह चाहते तो उसी की बुद्धि उलट करके उसी के सिर पर हाथ रखवा देते, वो कुछ भी करने में समर्थ थे, लेकिन लीला कर दिए महाराज, लीला उन्होंने लीला की। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, भक्त अपने भगवान अपने भक्त की महिमा भी बढ़ाना चाहते हैं, भक्त भगवान अपने भक्त की महिमा भी व्याख्यापन करना चाहते हैं। तो उन्होंने, मेरे एक भक्त हैं विष्णु, क्या नाम उनका, विष्णु, आज मेरे भक्त विष्णु की महिमा पढ़नी चाहिए, तो दौड़ने लग गए। महाराज आगे आगे दौड़े, अच्छा अंतर कितना, अगर एकदम दौड़ करके आगे चले जाते तो वृकासुर भस्मासुर भागता नहीं, क्योंकि दिखाई नहीं देते तो किसके पीछे भागते, तो दूरी भी मेंटेन किए हुए हैं और पकड़ में भी नहीं आ रहे हैं, पकड़ में भी नहीं आ रहे हैं, दूर भी मेंटेन किए हुए हैं। खैर जो आगे की घटना आपको मालूम है, लेकिन मेरा कहने का अर्थ है वो क्या है, आशुतोष है। क्या है आशुतोष, जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। अगर आप भगवान शंकर की आराधना करें तो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं, बड़ी जल्दी। अरे आपको कुछ ना मिले तो रास्ते में चलते हुए किसी पेड़ का ही पत्ता उठा लाइए, वही चढ़ा दीजिए, प्रसन्न हो जाएंगे। रास्ते में कोई फूल मिल जाए वही तोड़ के चढ़ा दीजिए तो प्रसन्न हो जाएंगे। अगर कुछ भी ना मिले तो एक लोटा जल तो मिल सकता है। कहते हैं कि एक बार एक चोर मंदिर में, घंटी थी शिवजी के मंदिर में, उसको उसका चुराने का मन कर गया, कोई नहीं था, जैसे चोरी करने लगा तो हाथ नहीं आया तो सिर के ऊपर ही चढ़, शिवजी पर ही चढ़ गया। शिवजी प्रसन्न हो गए, चोर घबराया, शिवजी ने कहा वरदान मांगो। उन्होंने कहा वरदान, मैं तो चोरी करने के लिए आया था। शिवजी ने कहा छोड़ो, कोई तो फूल पत्ते चढ़ाता तू तो सारा का सारा ही चढ़ गया। ये दोष नहीं देखते, ये दोष नहीं देखते, यही भगवान की भगवत्ता है। अगर भगवान दोष देखने लग जाए, देखो अगर भगवान दोष देखने लग जाए तो किसका उद्धार हो सकता है, एक ही वाक्य है। कल हमारे सामने दो वाक्य लिखवाने के लिए आए कि भाई रोज प्रतिदिन यहां भेजते हैं, एसएमएस करते होंगे, तो पहली बार हुआ। एक वाक्य अब हमारे दिमाग में आ गया, एक ही वाक्य, ईश्वर जीव का दोष नहीं देखता और जीव ईश्वर की कृपा को नहीं देखता। ईश्वर जीव का दोष नहीं देखता और जीव ईश्वर की कृपा का अनुभव। तो ऐसे हमारे भोलेनाथ हैं, दयालु हैं, दया के सागर हैं, और उनकी कितनी महिमा है, कितनी महिमा है, हम आपको क्या बताएं। आप अगर उनकी महिमा इसी तरह से लगातार सुनने चाहेंगे तो फिर आज का तो समय हो गया, कल आना पड़ेगा आपको, हैं? भगवान की महिमा अपरंपार है, अनंत है। वैसे ही स्वाभाविक ही प्रातःकाल उठे तो मन कर गया, यहां आए तो मंत्र भी वही उच्चारण हो रहा था, तो ये थोड़ी सी चर्चा हम 31 तारीख तक भगवान शंकर पर करेंगे। आज इतना ही, ओम शांति शांति शांति।